नमस्कार साथियों, छिंदवाड़ा मोबाइल वाणी पर आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत रूबरू होने जा रही है जिन्हें आप ही नहीं संपूर्ण देश में ख्याति प्राप्त यह शख्सियत है। आज छिंदवाड़ा मोबाइल वाणी पर हमसे रूबरू होने जा रहे समाजवादी वरिष्ठ चिंतक माननीय रघु जी ठाकुर। नमस्कार ठाकुर साहब
जी। नमस्कार सर। नमस्कार विक्रम जी।
साहब जी, हम आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि वर्तमान में देश में किसान आंदोलन चल रहा है, क्या कारण है कि सरकार इस बिल को वापस नहीं ले रही है?
देखिए, किसान आंदोलन का हम समर्थन करते हैं और किसानों की जो बेचैनी है उनके साथ में हमारी सबकी सहभागिता है। सरकार को ये समय से सामने आया कि सरकार ने जब राज्यसभा में बिल आए थे उस समय अपने संवैधानिक दायित्व का पालन नहीं किया। संसदीय नियम में कहते हैं कि अगर एक भी सांसद कोई ये मांग करता है कि मतदान कराया जाए तो उसका मतदान होना चाहिए, परंतु भारत सरकार के लोगों ने न मतदान कराया और उस बिल को ध्वनिमत से पारित कर दिया। अगर उस समय इसको प्रवर समिति को भेज दिया जाता तो देश के लोगों में इसकी चर्चा होती तो लोग आ पाते। इसलिए किसानों के मन में भावना बनी है कि सरकार इस पर कोई चर्चा नहीं करना चाहती और इसको बंद करना चाहती है। दूसरे 30 दिन हो चुके हैं, काफी लोग वहां ठंड के चलते मौत के शिकार हुए हैं, कुछ लोग आत्महत्याएं भी की हैं, परंतु सरकार की जो बेरुखी है ये एक प्रकार की अमानवीय और तानाशाही स्थिति है। सरकार अब बातचीत करे, उनकी बात को से तर्क का उत्तर दे, उस बात को स्वीकार करना नहीं करना ये बात का सवाल है, पर पहले इतनी संवेदनशीलता होना चाहिए कि कोई भी निर्वाचित सरकार हो लोकतंत्र में वो सरकार जनता के साथ साथ संवाद कायम रहे। ये दुख की बात है कि सरकार ने ठीक ढंग से बात कायम नहीं किया है। केवल पत्र भेज देते हैं कि आपको प्रस्ताव भेज दीजिए, वो भी प्रस्ताव भेज देते हैं कि इसको रद्द कर दीजिए। दूसरी बात यह है कि इसके जो मुद्दे हैं उन मुद्दों को भी समझा जा सकता है। लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी की तरफ से हमने करीब 1.5 माह पहले प्रधानमंत्री जी को, कृषि मंत्री को पत्र भेजा था, उस समय आंदोलन शुरू नहीं हुआ था, तो हमने उनको 3 सुझाव दिए थे। पहला सुझाव हमने उनको दिया था कि ये निर्णय होना चाहिए कि इस कानून में ही यह प्रावधान किया जाए, वैधानिक प्रावधान किया जाए कि जो लागत मूल्य से 1.5 गुना जाना है वो देने का प्रावधान किया जाए, यानी जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है उस मिनिमम सपोर्ट प्राइस को अनिवार्य बनाया जाए और अगर कोई नहीं देता है तो दंडनीय बनाया जाए। वो खरीददार सरकार हो या खरीददार कोई निजी व्यक्ति हो, परंतु ये प्रावधान होना चाहिए कि अगर खरीददार कोई भी हो अगर वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस नहीं देता है तो उसे दंड दिया जाएगा। साथ ही दूसरा जो प्रश्न था इसके साथ जुड़ा हुआ वो था कि इस कानून में अदालत के अधिकार छीन लिए, उन्होंने नोडल एजेंसी बनाई है जिसमें एसडीएम को बनाया है, उसकी अपील कलेक्टर के पास हो सकती है, और हम सब लोग जानते हैं कि जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं वो सत्ता पक्ष के दबाव में होते हैं, इसलिए उस सत्ता पक्ष के दबाव को कोई ठीक निर्णय हल नहीं हो सकता है। तो ये उचित जरूर होगा कि न्यायपालिका के अधिकार वापस किए जाए, और हमने ये प्रस्ताव सरकार को दिया था कि ना केवल न्यायपालिका के अधिकार को वापस किया जाए बल्कि किसान से भी कमजोर पक्ष है तो बगैर कोर्ट फीस के ही उनके लिए ये अधिकार दिया जाए कि वो अपनी याचिका दायर कर सकें और कोर्ट से न्याय पा सकें। तीसरी बात है कि जो स्वामीनाथन आयोग है उसकी जो रिपोर्ट है वो रिपोर्ट अधूरी है। इस तो मैं थोड़ी सी इतिहास की बात आपको बता दूं कि स्वामीनाथन आयोग जो है ये अभी हाल में बना, यानी 2006 में, परंतु डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने 1960 के दशक में कहा था कि हिंदुस्तान में दाम बांधो नीति होना चाहिए। तो दाम बांधो नीति में उन्होंने सिद्धांत तय किया था कि सामान चाहे कारखाने पैदा होता हो या खलिहान में पैदा होता हो उसका लागत मूल्य निकाला जाए, उसे 50% और जोड़ा जाए और बोरो मूल्य दिया जाए। परंतु लोहिया ने जो कहा था दाम बदली थी में, उसमें खेत खलिहान की पैदावार और कारखाने की उत्पादन दोनों पर नियम लागू होना था। इस प्रावधान में स्वामीनाथन में कमी यह है कि यह केवल कृषि पर लागू होता है, यह उद्योग कारखाने पर लागू नहीं होता है। अब मान लीजिए किसान को लागत का 1.5 ग्राम 50% ज्यादा मिल जाए और कारखाने वाले जो है 50 गुना ज्यादा पर बेचेंगे, उनके ऊपर कोई नियंत्रण नहीं होगा, तो कुल मिलाकर किसान का पैसा या समा चला जाएगा या बाजार के बाद चला जाएगा, इससे किसानों को लाभ होने वाला नहीं है। तो स्वामीनाथन आयोग अधूरा है, इसके बजाय डॉक्टर लोहिया की जो कृषि नीति जो दामन होने की थी उसको लागू किया जाए। ये 3 सुझाव मैंने भारत सरकार को दिए थे, परंतु अगर उन्होंने सुझाव माने होते तो समय नहीं आता। अब जो संघर्ष चल रहा है, हमने मान लिया कि संघर्ष जो है ये भी बहुत सीमित इलाके में है और जनसंघ सीमित इलाके में, पर किसानों की भावनाएं सुदृढ़ हैं इस हिसाब से, तो सरकार को इन भावनाओं को समझना चाहिए। मैं प्रधानमंत्री से कहना चाहता हूँ कि मन की बात कहो मत, मन की बात सुनो भी। आज देश आपके मन की बात भी सुनना चाहता है, बल्कि देश चाहता है कि आप देश के मन की बात सुने और किसानों की बात को सुना जाए, उनकी बात को बातचीत के संवाद से हल किया जाए। अगर मुझे लगता है कि सरकार इन 3 बातों को पूरा करेगी तो कोई कारण नहीं है कि इस गतिरोध का हल ना निकले। किसान भाइयों से बातों में कहना चाहता हूँ कि स्वामीनाथन आयोग की अकेले की मांग करना या बिल को अकेले वापस करने की मांग करना, ये भी बहुत तर्कसंगत है। इसलिए स्वामीनाथन आयोग वाली बात तो मैंने आपको बताई, मान लीजिए कि ये कानून वापस हो गया। अब आप जानते हैं कि हिंदुस्तान में जो कुल खरीद होती है इसका कह रहे किसान की पैदावार थी, इसका केवल 6% जो है वो किसान की फसल को सरकार खरीदती है। तो MSP केवल 6% पे लागू है, 94% पे लागू नहीं है। अब अगर बिल वापस हो जाए तो क्या 94% को MSP की दाम मिल जाएंगे? नहीं मिलेंगे। इसलिए ये भी मांग करना चाहिए कि बिल वापस करो ना करो, सवाल नहीं है, सवाल है इस बिल में प्रावधान जोड़ो कि खरीद सरकारी हो या निजी, 100% खरीद उसके लिए MSP दी जाएगी, इससे कम देना अपराध होगा। अब आप बताइए
भाई साहब
जी,
ये जो अभी किसान आंदोलन चल रहा है, यहाँ पर अन्य राज्यों से जो किसान आंदोलन में शामिल होने जा रहे उन्हें रोका जा रहा है, इन्हें क्यों नहीं शामिल होने दिया जा रहा है?
जी।
क्या अब विरोध के शोर को दबा दिया जाएगा?
ये दबा नहीं पाएंगे, ये प्रयास सब सरकारें करती हैं और परंतु ये बहुत दिन चलता नहीं है। ये रोकने का प्रयास कर रहे हैं, कुछ दिनों में ये स्थिति ऐसी बन जाएगी कि इनको रोकना संभव नहीं होगा, एक प्रकार के अंतर युद्ध की स्थिति पैदा हो जाएगी।
आपका छिंदवाड़ा जिले से भी लगाव रहा है और छिंदवाड़ा जिले के सौंसर विकास खंड में आपका 4 से 5 बार आगमन भी हो चुका है। किसानों को अपने आप को ठगा हुआ महसूस ना हो, क्या धान और गेहूं के अलावा अन्य सामग्री पर भी सरकार MSP देने की गारंटी देगा, जैसे कि सौंसर क्षेत्र?
मैंने जो आपसे कहा ना कि मैं तो ये मांग कर रहा हूँ कि हर फसल कोई भी हो, अकेले धान और गेहूं नहीं, चना है, कपास है, वो सब्जियां हैं, फल हैं, ये MSP तय होना चाहिए और MSP का आधार होना चाहिए कि लागत मूल्य प्लस 50%, क्योंकि एक दो से काम नहीं चलेगा। और ये बीमारी इसलिए है क्योंकि अभी केवल सरकार खरीद करती है, तो सरकार खरीद करती है अपने सुरक्षित भंडार के लिए या PDS के लिए, तो उसके लिए वो केवल 6% खरीद करते हैं, इसलिए उनको गेहूं धान चावल इसी की आवश्यकता होती है। परंतु हम जब किसान के दृष्टिकोण से बात करते हैं तो फिर हम ये चाहते हैं कि सब चीजों के लागत मूल्य तय हो, लागत मूल्य लगा के 50% जो के MSP तय हो और वो लागू भी है।
इस किसान बिल से क्या कोई किसानों को फायदा हो पाएगा जो केंद्र सरकार बड़े बड़े दावे करिए इस किसान बिल को लेकर।
देखिए किसान बिल के फायदा जो सरकार कह रही है बिल तो मैं कह रहा हूँ उसको लागू तो करे। उन्होंने कहा कि हम MSP देंगे, गारंटी दे रहे हैं, ठीक है ना।
हाँ।
हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप MSP सरकार अकेले दे। जो 96% लोग जो पर्चेज खरीदते हैं वो कौन है? वो निजी खिलाड़ी है, प्राइवेट प्लेयर्स है, और उन पर तो MSP लागू है नहीं भाई। MSP तो आपकी लागू है कि वो सरकारी सरकार जो खरीद करती है वो MSP खरीदती है, मंडी में खरीदती है तो खरीद लेती है। तो हमारा कहना यह है कि खरीदार कोई भी हो, प्रावधान ये होना चाहिए कि सभी खरीदार वो निजी हो या सरकारी हो वो MSP से कम नहीं देंगे, जनरल दंडनीय अपराध होगा। ये अगर उसमें जुड़ जाए तो बिल की शक्ल बदल जाएगी।
यहाँ से हमारे साथ छिंदवाड़ा मोबाइल वाणी पर रूबरू हुए दक्षिक महासंघ के अध्यक्ष, समाजवादी वरिष्ठ चिंतक, गांधीवादी एवं रोहियावादी विचारक माननीय रघु ठाकुर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद छिंदवाड़ा मोबाइल वाणी से दिनकर पाटुलकर।
छिंदवाड़ा मोबाइल वाणी के दिनकर जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने कम से कम बातें पहुंचाई और देश के लिए कैसे से निकाला जा सकता है इसके रास्ते, न केवल किसानों के समाज जाकर के समक्ष, देश के समक्ष आप रखेंगे। आपको बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद।